नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
नमस्कार आदाब साथियों, मैं अंजलि खबर लेकर आई हूं। क्या आप जानते हैं कि राज्यों में वृद्धों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए केंद्र निधि का सिर्फ 7% का ही इस्तेमाल होता है। पिछले 2 वर्षों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली के लिए जारी धन में से 7% से अधिक उपयोग नहीं किया है, जैसा कि सरकार ने एक प्रश्न में इस उत्तर में 29 दिसंबर 2017 को संसद को बताया है। राज्यसभा संसदीय स्थायी समिति की इस 2015 एक्शन टेकन रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने कहा, स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है और यह राज्य सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है कि जिले में इस योजना को लागू करने के दौरान धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करे। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति को पता चला है कि विभाग धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने में बहुत धीमा रहा है, जो कि गतिविधियों के वास्तविक कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। एक गैर लाभकारी संस्था हेल्पेज इंडिया में पॉलिसी रिसर्च और डेवलपमेंट के निदेशक अनुपमा दत्ता ने बताया कि परिणामी सुविधाएं उपमानक या गैर विद्यमान है। उन्होंने आगे बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भारत के अधिकतर बुजुर्ग आबादी रहते हैं, वहां कोई सुविधाएं नहीं है। NPHCE जैसे कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि उनके पास योग्य कर्मचारियों, प्रशिक्षण, वेतन आदि के लिए अतिरिक्त राशि अनुपलब्ध है। कार्यक्रम शुरू करने के बाद उन्हें जरूरतों को पूरा करने के लिए धन का स्रोत होना चाहिए।
धन्यवाद अंजलि जी। दोस्तों, मैं दीपक, आज हम बात करने वाले हैं एक दशक के दौरान दलितों के खिलाफ अपराध में वृद्धि के बारे में। एक दशक से 2016 तक दलितों के खिलाफ अपराध दर में 25% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक
2006 में प्रति 1 लाख दलितों पर 16.3 का अपराध आंकड़ा था, जो 2016 में बढ़कर 20.3 हुआ। आदिवासी या अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध दर में कमी आई है। ये आंकड़े 2006 में प्रति 1 लाख आदिवासी पर 6.9 थे, जो 2016 में 6.3 हुए। हालांकि दोनों हाशिए के समूह के लिए पुलिस जांच और लंबित मामलों में क्रमशः 99% और 55% की वृद्धि हुई है, जबकि न्यायालयों में लंबितता 50% और 28% बढ़ी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध दर में सजा दर 2% अंक और 7% अंक गिरकर 2006 से 2016 में क्रमशः 26% और 21% हुआ। अदालतों में एक दशक के दौरान दलितों के खिलाफ अपराध के लंबित मुकदमे में 50% की वृद्धि हुई है। यह आंकड़े एक दशक से 2016 तक 85,264 से बढ़कर 1,29,883 हुए हैं। अकेले 2016 में अत्याचार अधिनियम की रोकथाम के तहत कम से कम 40,801 नए अपराध दर्ज किए गए थे। 15,000 से कम मामलों में उस वर्ष जांच पूरा हुआ। अदालतों में संपन्न प्रशिक्षणों की संख्या में 28% की गिरावट हुई है। यह आंकड़े 2006 में 20,495 से 2016 में 14,615 हुए हैं। ऐसे 33,455 लंबित मामलों के साथ उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बदतर रहा। मुंबई स्थित NGO सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म द्वारा नागरिक समाज संगठनों और संसदीय समितियों की रिपोर्ट 2017 में इस अध्ययन से पता चलता है कि शिकायत का देरी से होना, स्पॉट जांच में देरी, पीड़ितों की सुरक्षा की कमी और अत्याचार अधिनियम रोकथाम से संबंधित अनुभागों के तहत अपराधों को दर्ज करने की अनिच्छा, ये कम सजा दर के मुख्य कारण है।
धन्यवाद दीपक, और मैं हूँ मधु। दोस्तों, आज सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकार ने सोशल मीडिया पर नजर रखने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रम बेसिल ने 25 अप्रैल 2018 को एक टेंडर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब नाम से जारी किया है। यह टेंडर सोशल मीडिया एनालिटिकल टूल के लिए है। यह टूल यानी सॉफ्टवेयर हाल ही में चर्चा में आए कैम्ब्रिज एनालिटिका टूल जैसा ही है। इस टूल के माध्यम से वह एजेंसी आपके द्वारा भेजी गई सभी ईमेल उनके अटैचमेंट को पढ़ सकती है, पर आपके फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम और प्ले स्टोर पर नजर रखेगी। यह टूल हर प्रयोगकर्ता के प्रत्येक अकाउंट पर नजर रखेगा। टूल उस व्यक्ति के अतीत में किए गए कमेंट, लेखों, भेजी गई मेल का भी अध्ययन करेगा। इस आधार पर वह उस व्यक्ति का पूर्ण प्रोफाइल तैयार करेगा। यह ऑनलाइन टूल होगा जो लगातार जानकारी एकत्रित करता रहेगा। यही नहीं, यह डेटा माइनिंग भी करेगा, यानी डेटा का गहन विश्लेषण भी करेगा और उसके परिणाम एजेंसी के माध्यम से सरकार को देगा। यह सरकार को बताएगा कि अब कौन सी खबरें किस मीडिया में चल रही हैं। सरकार की किस योजना पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, यह सरकार को यह सुझाएगा कि किस तरह की खबरें चलाने से या जानकारी देने से खबरों के इस प्रभाव यानी ट्रेंड को बदला जा सकता है। इस तरह की खबरों के लिए वह सामग्री यानी कंटेंट भी उपलब्ध कराएगा। इसके लिए 20 विशेषज्ञ लोगों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार के अनुसार इस सब का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाना और उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देना है, जिससे वह अनुशासित और जानकार नागरिक बन सके। लेकिन इस टेंडर को पढ़कर साफ हो जाता है कि सरकार इस टूल के माध्यम से अपने नागरिकों की निगरानी करना चाहती है, उन पर नियंत्रण करना चाहती है और उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है। खैर, यह सब बातें तो आने वाले समय में ही पता चलेंगी।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।